समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
मौसम बदलने के साथ साथ सेहत का मिजाज भी बड़ी तेजी से बदल रहा है और अक्सर लोग इस बदलाव का शिकार होकर परेशान भी हैं। पता हम सबको है कि मौसम बदलने के साथ जरा सी सावधानी जरूरी है। बावजूद इसके हम में से कोई भी इसे गंभीरता से नहीं लेता और फिर शुरू होता है डॉक्टर के पास जाने और फिर दवाइयाँ खाने का सिलसिला। खैर, अभी तक अगर परवाह नहीं की है तो हमारी सलाह मानिए और बस जरा सी सावधानी बरतिए ताकि इस बदलते मौसम का भरपूर मजा ले सकें, मगर इसकी वजह से बीमार पड़कर परेशानी से दो चार न हो। आगाज करते हैं FM 100.1 MHz आकाशवाणी गोल्ड पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का। साथ हूँ आपके मैं नईम अख्तर और मेरी साथी अनीता आनंद। कैसी हैं अनीता आप?
All good and like you mentioned, zara si saavdhani nahi. I would suggest to all our listeners that be careful and wear your woolens. High time the temperature has dipped to nearly 16 and sometimes it's shown 15 also. Anyway, hello, good morning, very warm welcome to our listeners tuned into Akashvani FM Gold on 100.1 and the Akashvani network. We bring you our daily news magazine program Aaj Savere, wherein we share the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 25th of November. So let's begin with the headlines.
जी, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होगा। 26 दिन तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होंगी। हालांकि कल 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संसद की बैठक नहीं होगी। संविधान दिवस पर मुख्य कार्यक्रम संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में होगा, जहां 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था। इससे पहले संसद के दोनों सदनों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के संबंध में विचार विमर्श के लिए नई दिल्ली में कल सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार संसद में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्षी दलों से लोकसभा और राज्यसभा के सुचारू रूप से संचालन में सहयोग करने की अपील की।
Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the ICA Global Cooperative Conference at Bharat Mandapam in New Delhi today. For the first time in 130 years long history of the International Cooperative Alliance, ICA, the Global Cooperative Conference and General Assembly are being organized in India. On the occasion, Mr. Modi will launch a commemorative stamp on the International Year of Cooperatives 2025. Prime Minister of Bhutan, Dasho Shering Tobge, and the Deputy Prime Minister of Fiji, Manoa Kamikamika, will also attend the conference. Our correspondent reports that the global conference is being hosted by Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited in collaboration with ICA and Government of India and Indian cooperatives Amul and Kribco.
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत इटली को यूरोप में प्रमुख साझेदार, अपना महत्वपूर्ण सहयोगी और भूमध्य सागरीय क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली देश मानता है। रोम में भारतीय दूतावास में नए कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से हो रही बातचीत से पता चलता है कि आपसी संबंध कितने गहरे और व्यापक हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के संबंध में हमारे दृष्टिकोण एक समान है और वैश्विक तथा क्षेत्रीय मामलों से निपटने के हमारे प्रयासों में तालमेल के साथ आपसी रिश्तों को विकसित करने में नया उत्साह नजर आता है। प्रस्तावित भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये यूरोप और एशिया के बीच बड़ा प्रभावकारी होगा। अपनी इटली यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर फ्यूजी में G7 देशों के विदेश मंत्रियों के आउटरीच सत्र में भाग लेंगे। वहां भारत को अतिथि राष्ट्र के रूप में निमंत्रित किया गया है। वो रोम में 10वें MED मेडिटेरेनियन डायलॉग में भी भाग लेंगे।
द COP29 क्लाइमेट मीटिंग इन बाकू अज़रबैजान यस्टरडे अडॉप्टेड एन एग्रीमेंट टू ट्रिपल द प्रेजेंट लेवल ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू $300 बिलियन, बट इंडिया स्ट्रांगली अपोज्ड not only the amount agreed upon, but also the manner in which the agreement was adopted. India does not accept the goal proposal in its present form. The amount that is proposed to be mobilized is abysmally poor. It is a paltry sum. It is not something that will enable conducive climate action that is necessary for the survival of our country, Indian negotiator Channi Raina said after the agreement was adopted, without allowing any opportunity to countries to make any observations.
सरकार आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय अभियान अब कोई बहाना नहीं की शुरुआत करेगी। इस अभियान में जनता, सरकार और प्रमुख हितधारकों से महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान किया जाएगा। ये अभियान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक साझा प्रयास है।
Railway Minister Ashwini Vaishnav will address the National Convention of All India Scheduled Castes and Scheduled Tribes SCST Railway Employees Association at Anjani Railway Ground in Nagpur, Maharashtra this morning. The National Convention and Annual General Meeting of this organization could not be held for the last 5 years due to the COVID-19 pandemic. Therefore, the association has decided to hold the National Convention this year at Nagpur on a grand scale in the background of Constitution Day, which is on 26th of November.
एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने शिकायतों के समाधान में तेजी लाने के लिए अपने कन्वर्जेंस कार्यक्रम के तहत 1000 से अधिक कंपनियों के साथ भागीदारी की है। ये कंपनियां ई कॉमर्स, निजी शिक्षा, रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली सामग्रियों, FMCG, उपभोक्ता वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, खुदरा दुकान, ऑटोमोबाइल और बैंकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में फैली हुई हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इन कन्वर्जेंस कंपनियों से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन समाधान के लिए सीधे उनके पास भेजा जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि कन्वर्जेंस भागीदारों को की संख्या 2017 में 263 कंपनियों से लगातार बढ़ी है और अब 1900 कंपनियों तक पहुंच गई है। मंत्रालय ने कहा कि ये वृद्धि हेल्पलाइन की दक्षता बढ़ाने, त्वरित और प्रभावी शिकायत निवारण को सक्षम करने और पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने में इन भागीदारों की भूमिका को उजागर करती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विश्वेश्वरन तथा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के मुख्य महाप्रबंधक और मुख्य विक्रय विपणन अधिकारी गुरुशरण राय बंसल इसमें भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के महत्व, पात्रता और अन्य तकनीकी पहलुओं के संबंध में हमारे विशेषज्ञों से रात 9:30 बजे के बाद टेलीफोन नंबर 0112342105 और 0112331444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा श्रोता व्हाट्सएप के माध्यम से 9289094044 नंबर पर अपने प्रश्न भेज सकते हैं या #AskAIR के साथ X पर अपने प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं।
Ahead of the Constitution Day to be observed tomorrow, Lok Sabha Speaker Om Birla rejected claims made by some quarters that Constitution is under threat. He underlined that Constitution belongs to people of the nation and every section of society has faith in it. The full interview can be heard on Surkhiyon Mein program of Akashwani News today at 7:10 p.m. on 100.1 FM Gold.
आज सवेरे में अब प्रमुख महानगरों से जुड़ी प्रमुख खबरों को शामिल करने का वक्त है। तो चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद की खबरें आप सुना रही हैं अनीता
जी। On the occasion of NCC Day, a ceremonial wreath-laying ceremony was held at Victory Memorial in Chennai yesterday. Lieutenant General K.S. Brar, General Officer Commanding Dakshin Bharat Area, laid the wreath at the memorial. The ceremonial guard was paraded by the NCC cadets of the 13th Battalion NCC Chennai that put up an excellent drill performance. Senior officials, including Director General of the Tamil Nadu and Andaman Command H. Raghav, participated in the event. Group commanders and commanding officers of the NCC units also attended the event. The director of Nehru Yuva Kendra Sangathan, Senthil Kumar, in an interaction with the media, told that the Viksit Bharat Challenge will kick off on My Bharat platform with a nationwide quiz to begin today. He informed that Viksit Bharat Young Leaders Dialogue will be held on 11th and 12th of January next year. The director said that Prime Minister Narendra Modi will be interacting with 3,000 young leaders. The vision of the Prime Minister is to develop at least 1 lakh youth leaders in the country. Viksit Bharat Challenge, state-level youth festivals and celebrations along with youth icons of the country. More details are available on mybharat.gov.in. Karnataka Infrastructure Development Minister M.B. Patil informed that a proposal is submitted to rename three railway stations in Gangavati, Bhanapura and Munirabad in North Karnataka. He said that the recommendation will be forwarded by the Chief Minister to the Union Home Minister. M.B. Patil said that the proposal is to rename Gangavati station as Anjanadri or Kishkinda station, Bhanapura as Mahatma Gandhi station and Munirabad station as Huligemma Devi railway station in all Koppal district. Anjanadri is believed to be the birthplace of Lord Hanuman and Huligemma Devi is the local deity. The Southwestern Railway Division head office in Hubli celebrated Karnataka Rajyotsav Day to commemorate the state formation day. Eminent Kannada writer Dr. Malathi Pattanashetty appreciated the activities of Kannada Sangh established by the railway employees in the Southwestern Railway Zone. She emphasized on the contribution of railways in the development of North Karnataka. She unveiled the Karnataka book Nudi Toran on this occasion. Rangoli competition, cultural programs marked the event, and meritorious students of railway employees were felicitated. The fourth edition of Lok Manthan has concluded with a call for a deeper connection to knowledge grounded in dharma to reclaim Bharat's civilizational ethos and assert its unique approach to global challenges. The four-day event brought together intellectuals, cultural icons and delegates from across the world, reaffirming the country's role as Vishwa Guru in the modern era. Speaking in the presence of several union ministers at the valedictory, RSS Sarsangh Chalak Mohan Bhagwat emphasized that while the world races ahead without contemplating its destination, Bharat has always reflected on the deeper truth of unity and oneness. He stated that there is no need to respond to those whose experiments have failed over the last 2,000 years. On the global stage, India will play its by its predefined parameters and in its unique way. Earlier, Union Finance Minister and BJP senior leader Nirmala Sitharaman highlighted Bharat's unmatched ability to preserve its unity amidst historical challenges, stating that the native tribes of Europe, Canada and Australia and Egypt have been persecuted and continue to struggle for equality. She said, India's itihas and puranas celebrate the oneness of Vanvasi, Gramvasi and Nagarvasi. Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat reflected on the distortion in Indian history. Even during post-independence, he said the people of the country missed the opportunity to reclaim their roots after independence. However, he said the people are finally on the path to rediscover their original thought and way of life. Union Coal Mines Minister G. Kishan Reddy lauded the participation and cultural richness showcased at Lok Manthan 2024. He emphasized the importance of such platforms in uniting Bharat and inspiring action for the nation's progress. And now for Metro News, City News from Delhi, Mumbai and Kolkata, over to Naeem.
Ji, Delhi se shuruaat karte hain. Delhi Nagar Nigam ne bulk waste generator BWG ke panjikaran aur nigrani ke liye nav nirmit software platform vikasit kiya hai. Ye software BWG ko swayam panjikrit karne aur srot par kachre ke uchit prithakkaran, prasanskaran aur niptan sahit apshisht prabandhan niyamon ka anupalan sunishchit karne ke liye ek suvyavasthit aur upyogkarta ke anukool pranali pradan karega. सभी बल्क वेस्ट जनरेटर को जल्द से जल्द 311 ऐप या पोर्टल के माध्यम से प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना आवश्यक है. पंजीकरण या उचित अपशिष्ट प्रबंधन का अनुपालन न करने पर लागू नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी. नई दिल्ली में चल रहे 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में कल रविवार को बड़ी संख्या में आगंतुक मेले का आनंद लेने भारत मंडपम पहुंचे. सबसे ज्यादा भीड़ विदेशी स्टॉलों पर देखी गई, जिनमें अफगानिस्तान, तुर्की, थाईलैंड, चीन, मिस्र और ईरान के स्टॉल शामिल हैं. मेले में विदेशी स्टॉलों के साथ ही उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के देशी उत्पाद और व्यंजनों का जायका लेते हुए भी लोग नजर आए. दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद में बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए आवेदनकर्ता 30 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत जिले के मंडल रोजगार कार्यालय में पंजीकृत 12वीं स्नातक और स्नातकोत्तर प्रार्थी जिनके 31 अक्टूबर 2024 तक बेरोजगारी के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वो बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए इस महीने के अंत तक hrex.gov.in सरकारी पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. बेरोजगारी भत्ता योजना से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आवेदक फरीदाबाद सेक्टर 12 में मिनी सचिवालय स्थित मंडल रोजगार कार्यालय में जाकर या दूरभाष नंबर 01292299958 पर संपर्क कर सकते हैं। मुंबई की खबरों की बात करें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं हैं। कराड़ में पत्रकारों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में महायुति के जीत का कारण महिलाओं की बड़ी संख्या में भागीदारी हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद एमवीए और अधिक आश्वस्त है और अब एमवीए को और अधिक काम करने की जरूरत है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पार्टी अध्यक्ष अजीत पवार को विधानसभा में पार्टी का नेता चुना गया। पार्टी का के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा सांसद सुनीत तटकरे की अध्यक्षता में हुए बैठक में अजीत पवार को विधायक दल का नेता नियुक्त किया गया और उनके सहयोगी अनिल पाटिल को मुख्य सचेतक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के घोषित नतीजों की अधिसूचना निर्वाचित सदस्यों की सूची और राजपत्र की प्रति रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपी गई। भारत के उप मुख्य चुनाव आयुक्त हृदय कुमार, राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी एस चोकालिंगम ने राज्यपाल से मुंबई स्थित राजभवन में मुलाकात की और उन्हें अधिसूचना सौंपी। केंद्रीय मंत्री और आरपीएस अठावले के अध्यक्ष रामदास अठावले ने कहा कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सत्ता संभाली थी तब उनकी पार्टी को मंत्री पद नहीं दिया गया था और उन्होंने नई महायुति सरकार में मंत्री पद की मांग की थी। पत्रकारों से बात करते हुए श्री अठावले ने कहा कि इस बार महायुति को मंत्री पद नहीं मिला है। दलित और बौद्ध समुदाय से भारी संख्या में वोट मिले जिसने महाराष्ट्र में उनकी जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि आरपीआई को कम से कम एक मंत्री पद और एक एमएलसी सीट मिलनी चाहिए। और आखिरी खबर है मेरे पास कोलकाता से। पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा का सत्र शुरू होगा। पिछले कुछ समय में दिवंगत हुए मशहूर लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और सत्र समाप्त हो जाएगा। कल भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर एक प्रस्ताव लाया गया। ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पेश करेंगी।
And on to sports now. In the mega auction of Indian Premier League 2025 edition, Rishabh Pant and Shreyas Iyer fetched record bids, emerging as costlier players in the history of IPL. On day one of the auctions held at the Abadi Al Johar Arena in Jeddah, Saudi Arabia yesterday, we have a report.
Lucknow Super Giants made history by securing Rishabh Pant for an extraordinary 27 crore rupees, making him the most expensive player in IPL history. Punjab Kings emerged as another major spender, acquiring Shreyas Iyer for 26.75 crore rupees and spinner Yuzvendra Chahal for 18 crore rupees, the highest ever for an Indian spinner. Arshdeep Singh also went to Punjab Kings for 18 crore rupees. Kolkata Knight Riders also went all out for Venkatesh Iyer and roped him in for 23.75 crore rupees. On day one, a total of 72 players were sold, while 12 went unsold, including David Warner and Johnny Bairstow. At the end of the day, RCB have the highest purse left with 30.65 crore rupees, followed by Mumbai Indians with 26.10 crore rupees and then Punjab Kings with 22.50 crore rupees for the second day of the auction. Moving on to Pro Kabaddi League, Puneri Paltan defeated Bengal Warriors 51-34 in a one-sided match yesterday. With this win, Puneri Paltan has reached to third spot in standings. In the second match of the day, UP Yodhas defeated Patna Pirates 44-42 in a thrilling encounter. Yodha's dynamic raiding duo of Bhavani Rajput and Gagan Gowda made the difference. Now today, Puneri Paltan will face Jaipur Pink Panthers at 8 p.m, followed by another match between Bengaluru Bulls and U Mumbai at 9 p.m. Next update is from football, where Kerala Blasters FC registered a dominant 3-0 victory over Chennaiyan FC in Indian Super League match played at Jawaharlal Nehru International Stadium in Kochi yesterday. With this win, Kerala Blasters ended their 3-game losing streak. Today, Hyderabad FC will face Odisha FC at GMC Balayogi Athletic Stadium in Hyderabad. The match will kickstart at 7:30 p.m. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
And now some news from the 55th International Film Festival of India, IFFI, that's underway in Goa.
Dekhati roop सब राजों से पर्दे को उठाती तस्वीरें
वो दिल बहलाती कभी हंसाती कभी रुलाती तस्वीरें
ये हिंदुस्तानी सिनेमा ये मूवीज ये फिल्में रहती है करोड़ों के दिल में भारत के सिनेमा की है जय जयकार भारत के सिनेमा
As the International Film Festival of India enters its fifth day, the festival continues to be a hub of great ideas and discussions shaping the future of cinema. A series of high-profile panels are scheduled for today at Kala Academy, Goa. Over 70 national and international films are scheduled to be screened today, including Indian blockbuster Article 370 and international movie Under the Grey Sky. In the much-anticipated masterclass sessions, the day will begin with discussions on Will artificial intelligence alter filmmaking forever? Visionary creators Pragya Mishra and Anand Gandhi will discuss the transformative potential of AI in storytelling, from script writing to post-production. The panel will be moderated by Shekhar Kapoor, the IFFI Festival director and an acclaimed filmmaker. With visual effects transforming modern storytelling, the panel integrating VFX with cinematography will feature acclaimed cinematographer K.K. Senthil Kumar, known for his work on blockbusters like Bahubali. Internationally renowned filmmaker and this year's Satyajit Ray Lifetime Achievement Award recipient Philip Noyes, celebrated for films like The Bone Collector and Salt, will conduct a discussion on how to succeed in new Hollywood session. Noyes is set to provide a masterclass on navigating the complexities of global film industry and achieving success in Hollywood. Later in the day, Indian film actress Kriti Senan will discuss the changing narrative for women in filmmaking. On the sidelines of these events, IFFI Star will continue to entertain people and attract cinephiles to the festival. Earlier yesterday, Bollywood star Ranbir Kapoor paid tribute to the legendary actor and filmmaker Raj Kapoor as part of his centenary celebrations in IFFI. During an engaging masterclass session, Ranbir Kapoor shared that Raj Kapoor's films were more than just entertainment. They were powerful stories that connected deeply with the audience and left a lasting impact.
Raj Kapoor, the filmmaker, always explored different themes at different times of his life. If you see his earlier films like Avara, which was based on casteism, tells you a story about how an individual and the surroundings that he's been brought up in, what is that impact on that person and what that person becomes. And I think the latter part of the last few films that he really made strong films with Indian moral values, spoke about the society in such an honest and frank way, still making it really commercial and really entertaining.
For Aaj Savere with Durgesh Bhadauria, Omvesh Upadhyay, Goa.
और अब बात कर लेते हैं महानगरों के मौसम के बारे में. दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय हल्का कोहरा छाया रहेगा. अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मुंबई में भी सुबह के समय धुंध छाने और बाद में मौसम साफ रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
Chennai is expected to have a generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 25 degrees and the maximum will be around 30 degrees Celsius. Bengaluru is also expected to have fog and mist in the morning and a partly cloudy sky later. The minimum temperature was 17 degrees and the maximum will be around 27 degrees Celsius. Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between a minimum of 16 and a maximum of 29 degrees Celsius.
25 नवंबर है आज और 25 नवंबर में इतिहास में क्या क्या घटा उसके बारे में हम बात करेंगे. लेकिन अनीता के पास कुछ खास बात भी है आज की तारीख को लेकर.
जी, टुडे इज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. दिस वॉज डेजिग्नेटेड बाय द यूएन जनरल असेंबली as 25th of November. The premise of the day is to raise awareness around the world that women are subjected to rape, domestic violence and other forms of violence. Furthermore, one of the aims of the day is to highlight that the scale and the true nature of the issue is often hidden. For 2014, the official theme framed by the UN Secretary General's campaign, Unite to End Violence Against Women, was Orange for Your Neighborhood. For 2018, the official theme was Orange the World. In 2021, it was Orange the World End Violence Against Women Now. The day got an additional designation in 2011 as Roses Revolution Day by the namesake movement against obstetric violence supported by the German National Committee of UN Women. And now we'll remember certain days which are important in history.
जी बिल्कुल 1758 में आज ही के दिन ब्रिटेन ने फ्रांस के डिक्विसन किले पर कब्जा किया था.
In 1866, Allahabad Court was established for Uttar Pradesh Territory. It sat in Agra with five judges between 1866 and 1868. It also had a bench in Lucknow.
1867 में अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का पेटेंट करवाया था. 1930 में जापान में एक ही दिन में भूकंप के 690 झटके रिकॉर्ड किए गए थे. 1948 में भारत ने राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना हुई थी. 1949 में स्वतंत्र भारत के संविधान पर संवैधानिक समिति के अध्यक्ष ने हस्ताक्षर किए और इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया. 1960 में टेलीफोन की एसटीडी व्यवस्था का भारत में पहली बार कानपुर और लखनऊ के बीच प्रयोग किया गया.
In the year 1999, Dr. APJ Abdul Kalam was appointed Principal Scientific Advisor to the Government of India. In the same year, Baba Amartya Gandhian and a noted social worker was chosen for the Gandhi Peace Prize.
और अब बात कर लेते हैं उन शख्सियतों की जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है.
जी, we begin this segment by remembering Diego Armando Maradona, whose death anniversary is today. The Argentine professional football player and manager, widely regarded as one of the greatest players in the history of the sport. He was one of the two joint winners of the FIFA Player of the 20th Century alongside Pele.
और आज ही पुण्यतिथि है सितारा देवी की, जो भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी. उन्हें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक क्वीन के खिताब से सम्मानित किया था और वो पद्मश्री, कालिदास सम्मान, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और शिखर सम्मान के साथ साथ पद्म भूषण से भी नवाजी गई थी.
Today is the birth anniversary of Dula Bhaiya Kagh, the Indian poet, songwriter and artist born in 1903 on this day, Sodavadri village, a village in Saurashtra region near Magwa in the Indian state of Gujarat, mainly known for his work on spiritual poetry related to Hinduism. He was facilitated with Padma Shri in the year 1962.
आज ही पुण्यतिथि है चंदूलाल जय भाई जयसिंह भाई शाह की, जो एक बहुत ही मशहूर और कामयाब निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक थे हिंदी फिल्मों के. उनकी उन्होंने ज्यादा 100 से भी ज्यादा फिल्में बनाई और उनके नाम पे ये रिकॉर्ड है कि किसी भी एक स्टूडियो से इतनी ज्यादा फिल्में नहीं बनाई गई थी. उन्हीं की फिल्म का एक गीत सुनते हैं.
घट के पद खोल रे तोहे पिया मिलेंगे, घट के पद खोल रे.
आज ही पुण्यतिथि है रायचंद बोराल की, जिन्हें आरसी बोराल के नाम से ज्यादा जाना जाता है और वो बहुत ही मशहूर संगीतकार रहे. उन्हीं की फिल्म प्रेसिडेंट का एक गाना सुनते हैं.
सोने का बंगला, चंदन का जंगला, सोने का बंगला, चंदन का.
And today is also the birth anniversary of the Indian singer-songwriter. While she mainly sang Punjabi folk songs, she is credited for pioneering and popularizing the genre. Kaur was recorded playback singer for Hindi film between 1948 and 52. For her contribution in Punjabi music, she earned the sobriquet of Nightingale of Punjab.
और आज ही है देवकी कुमार बोस की भी जयंती. उन्होंने भी हिंदी फिल्मों के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है. हिंदी के साथ साथ बांग्ला भाषा में भी उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई थी. और वक्त हो गया है अब अपने श्रोताओं से अनुमति लेने का, तो विदा दीजिए नईम अख्तर और अनीता आनंद को कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की.
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात, अवर हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज एट 8:15. थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. हैव अ सुपर्ब डे. नमस्कार.